दोस्तों, अक्सर हम लोग बातें करते हैं कि किस तरह से भारतीय भाषाओं को ऑस्ट्रेलिया में बढ़ाया जाए। इस ज्यादा बढ़ाने और इस सब में अक्सर जो पहली पीढ़ी के लोग हैं, जो वो मेहनत कर रहे होते हैं 10-12 साल से, मगर अब हम एक नया ट्रेंड सामने आया है, वो ये है कि युवा लोग भी भारतीय भाषा और खासकर हिंदी को ऑस्ट्रेलिया में स्थापित करने के लिए सामने आए हैं। इसी श्रृंखला में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सोनल शर्मा से। सोनल जी आईटी कंसल्टेंट हैं मेलबर्न शहर में, मगर एक कवियत्री भी हैं और हिंदी के क्षेत्र में मेलबर्न शहर में काम कर रही हैं। सोनल जी, SBS रेडियो हिंदी पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद जेथार जी, मैं SBS रेडियो को भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, अवसर दिया।
आपको अवसर देने जैसी क्षमता हम लोगों में नहीं है, मगर फिर भी सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि भाई आपका ये जो सफर है भारत से ऑस्ट्रेलिया आ जाने का और फिर हिंदी का जो पुष्प है उसको एक गुलदस्ता बनाने का, वो कैसे है?
जेथा जी, आपने कितने अच्छे तरीके से मेरे से ये प्रश्न पूछा है। मैं इंडिया में IT कंसल्टेंट थी, मैं काम करती थी IT के लिए एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। मुझे मेरी कंपनी ने यहाँ पे भेजा, जैसे नॉर्मली लोग आते हैं 4-5-7 पे मैं आई, 2.5 महीने के लिए आई थी मैं मेलबर्न, इस सोच के साथ आई थी कि सिर्फ मैं घूमने आ रही हूँ, बट शायद ईश्वर की इच्छा कुछ और थी। मेरा जो प्रोजेक्ट था वो एक्सटेंड होता गया और मैं अब, मेरे को 6 साल हो गए हैं यहाँ पे और अब मैंने, कंपनी भी मेरी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं मुझे IT में काम करने के लिए। और आपने जैसे पूछा हिंदी से मैं कैसे जुड़ी हूँ, तो मेरे पिताजी हैं, वो, उनका नाम है डॉक्टर वेद व्यथित, उन्होंने 9 बुक्स पब्लिश कर ली हैं, उनकी अभी 10वीं बुक भी आ रही है, तो वो हिंदी में प्रोफेसर हैं, वो जर्नलिज्म भी पढ़ाते हैं, तो हिंदी का माहौल मेरे घर में इतना ज़्यादा था कि शायद ये मुझे संस्कार मिले हैं कि बाहर आके भी मैं हिंदी से जुड़ूँ और हिंदी के लिए कुछ करूँ, तो इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगी।
यानी कि ये जो हिंदी में कविता कहना या हिंदी के बारे में काम करना, ये खानदानी बीमारी है।
आपने बिल्कुल सही समझा,
खानदानी बीमारी। इस खानदानी बीमारी को आप कैसे बढ़ा रही हैं?
ये खानदानी बीमारी बहुत बुरी है, ऐसा मुझे मेरे पिताजी ने पहले मुझे सूचित कर दिया है, बट अब आ गए हैं हम मेरे अंदर जीन्स, तो मैं उसको रोक नहीं पाती हूँ। यहाँ पे मेलबर्न में जितने भी कविता पाठ होता है या फिर शायरी होती है, मैं वहाँ पे जाके अपनी कविताएं सुनाती हूँ। अपनी कविता में मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा मैसेज जाए जो सब लोगों तक पहुँचे। और हिंदी के लिए यहाँ पे एक HSS हिंदी शिक्षा संघ है जिसकी मैं अभी इसी साल वाइस प्रेसिडेंट बनी हूँ, तो मैं चाहूँगी कि उसमें मैं अपना निस्वार्थ भाव से पूरा डेडिकेशन दूँ और कुछ काम करूँ जिससे ज़्यादा लोग हिंदी से जुड़े और हम हिंदी को मेलबर्न में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छी तरह से स्थापित कर पाएँ, जैसे कि और जो लैंग्वेजेस हो रही हैं यहाँ पर।
चलिए, जब आपने कह दिया है कि आपने हिंदी के लिए इतना सब करने का प्रण कर लिया है, ठान लिया है, तो ये बताइए, आपकी भी तो बड़ी कविताएं मशहूर हैं ऐसा सुना है हमने, एक कविता का, छोटी सी कविता का पाठ हमारे लिए भी कर दीजिए।
जेथा जी, समय को देखते हुए मैं आपको कविता नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी पंक्तियां सुना दूंगी।
चलिए सुनाइए, पंक्तियां सुनाइए।
मैं वो कश्ती नहीं जो तूफान से डगमगा जाए, मैं वो कश्ती नहीं जो तूफान से डगमगा जाए, मैं हूं चट्टान जो तूफान का रुख मोड़ जाए, मैं वो माला नहीं जो टूट कर बिखर जाए, मैं वो सीप हूं मोती स्वयं जहां शरण पाए, मैं वो सीप हूं मोती स्वयं जहां शरण पाए, मैं वो रंग नहीं जो बदरंग हो जाए, मैं वो रंग नहीं जो बदरंग हो जाए, मैं तो केसर हूं जो रंग देकर महक जाए, मैं तो केसर हूं जो रंग देकर महक जाए, मैं वो चंचल लहर नहीं जो उठे और खुद मिट जाए, मैं वो चंचल लहर नहीं जो उठे और खुद मिट जाए, मैं तो सागर हूं जिसमें रतन शरण पाए, मैं तो सागर हूं जिसमें रतन शरण पाए।
और भारतीयों की जो मेलबर्न में खासकर और ऑस्ट्रेलिया में जो हालत है उस पर कुछ कहती हैं आप क्या?
मैं जिंदगी के लिए, आपने जैसे बोला कि भारतीयों की जो हालत है, तो मैं उसको इस तरीके से देखती हूँ कि हम लोग बहुत मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं, बहुत एक तरह की लाइफ जी रहे हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी
जी
हैं।
बताएं।
अब मेरी मुलाकात मुझसे कहाँ होती है? ढूंढने बैठू खुद को तो रात बहुत होती है। अब मेरी मुलाकात मुझसे कहाँ होती है? दूरियां इतनी हो गई मुझसे मेरी कि चलते चलते घनी रात होती है। अब मेरी मुलाकात मुझसे कहाँ होती है? पता नहीं कब चली आई खुद से इतनी दूर, पता नहीं कब चली आई खुद से इतनी दूर। अब तलाशने की आरजू ही कहाँ होती है? अब मेरी मुलाकात मुझसे कहाँ होती है? करती हूँ आजकल जो मन में चाहता कभी, करती हूँ आजकल जो मन में चाहता कभी, फिर भी दिल में कश्मकश बहुत होती है। अब मेरी मुलाकात मुझसे कहाँ होती है? कहाँ मिल पाती हूँ शाम की चाय पर भी, कहाँ मिल पाती हूँ शाम की चाय पर भी, जमाने भर की चाकरी खत्म कहाँ होती है? अब मेरी मुलाकात मुझसे कहाँ होती है? दर्द को जी रही हूँ अकेले ही, दर्द को जी रही हूँ अकेले ही, शायरी बेशक मेरे साथ होती है। अब मेरी मुलाकात मुझसे कहाँ होती है? अब खुद को आशिक बना लिया है मैंने, अब खुद को आशिक बना लिया है मैंने, ये आशिकी जमाने को नागवार होती है। अब मेरी मुलाकात मुझसे कहाँ होती है?
सुनल जी, आखिरी चीज बहुत संक्षेप में बताइए कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो कैसे हिंदी से जुड़े।
मैं चाहती हूँ एक तो सबसे पहले हमें अपने अंदर हिंदी के लिए एक भाव प्रकट करना पड़ेगा। ये हम इससे हम कोई पैसा कमाना या हमें अपने जो स्वार्थ है उसको अलग रख के हमें अपने ये देखना है कि हमें अपना कल्चर कैसे बचाना है, हमें अपनी आगे वाली पीढ़ियों को कैसे जड़ों से मिला के रखना है, उनसे जोड़ के रखना है, तो उसके लिए हिंदी का होना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मैं यही सब पेरेंट्स से प्रार्थना करूँगी कि वो अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो स्कूल्स में हिंदी लैंग्वेज लें, हिंदी में कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उससे जुड़े, कम्युनिटी से जुड़ें।
सोनल शर्मा जी, हमसे मिलने बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद दथार जी, और मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।